हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब तो शालिनी भी झलक के इस बेखौफ और बेपरवाह अंदाज को देखकर हैरान रह गई थी। वो सोचने लगी थी कि कोई इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ या फिर इतना ज्यादा निडर कैसे हो सकता है। लेकिन अब शालिनी तेज आवाज में बोली थी, अब बस, पानी हद के ऊपर से जा चुका है, बहुत हो चुका, अब तो मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगी। लेकिन तभी अचानक से वहां एक जोरदार आवाज गूंजी थी। क्या हो रहा है यहां पर? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि दिग्विजय मल्होत्रा की थी। दरअसल उन्होंने लगातार अनामिका को कॉल किया था, और जब सब लोग बीएफ वाली बातों को लेकर अनामिका और झलक को कोस रहे थे, उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त वो फोन शालिनी की स्क्रीन पर उंगली लगने से आंसर मोड ऑन हो चुका था, जिसकी वजह से आरव और दिग्विजय सिंह जी ने सारी बातें सुन ली थी कि ऑफिस में आखिर ऐसा क्या गड़बड़ चल रही है और किस तरीके से वहां अनामिका को टारगेट किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। ये सोचते ही दिग्विजय जी के अंदर खुद ही आग लग गई थी। देर न करते हुए उन्होंने फटाफट आरव को डिस्चार्ज कराया और तुरंत वहां के लिए निकल पड़े थे। हालांकि आरव के हाथों में अभी भी ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त वो अपनी बेटियों के पास ही जाना चाहते थे। बहुत जल्दी ही वो लोग वहां पहुंच गए थे। अब जैसे ही वो वहां आए, शालिनी और बाकी सब एकदम सीधे होकर खड़े हो गए थे। वहीं सभी बिजनेसमैन सिंह जी को झुककर अभिवादन करने लगे थे, क्योंकि आखिरकार मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पूरे बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ऊंची और पॉपुलैरिटी रखने वाली कंपनी थी। सब लोगों के लिए वो किसी राजा से कम नहीं थे, और दिग्विजय सिंह जी की एक अलग ही पहचान थी। शालिनी ने भी तुरंत बंदूक नीचे रख दी और दिग्विजय सिंह जी के सामने खड़ी होकर हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर बोली थी, सर आप आ गए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये दोनों लड़कियां यहां जबरदस्ती घुस आई हैं और हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें अच्छा सा सबक सिखाकर यहां से बाहर फेंक दूंगी। फिर वो आगे बोली, मुझे पूरा शक है कि हमारी किसी राइवल पार्टी ने, यूके ब्रांच वाले राइवल ने इन दोनों को यहां हायर किया है ताकि हमारी ये मीटिंग कैंसिल हो जाए। आज आप कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले थे, कुछ बड़े फैसले लेने वाले थे, और शायद इसी वजह से कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप ये फैसले लें, इसलिए इन लड़कियों को भेजा गया है हमारी मीटिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये दोनों लड़कियां एक नंबर की घटिया और बदतमीज़ हैं, और ये ज़रूर किसी बड़े मोटिवेशन के साथ यहाँ आई हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें यहाँ से बाहर निकाल ही दूंगी। शालिनी ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेइज्जती करते हुए सारी बातें कही थी। वहीं आरव जी ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी, और दादाजी लाल आंखों से शालिनी को देखने लगे थे। दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन शालिनी को लगा कि शायद अब दादाजी झलक और अनामिका पर ही गुस्सा हो रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाएंगे, यही सोचकर वो संतुष्ट सी हो गई थी। तभी दादाजी बड़े कदमों से चलते हुए झलक और अनामिका के पास जाकर खड़े हो गए थे। झलक ने गहरी नज़रों से दादाजी को देखा, और दादाजी समझ चुके थे कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भले ही उन्होंने झलक को दिमाग शांत रखने के लिए अकेडमी में क्रेडिट ट्रेनिंग दिलवाई थी ताकि वो हर परिस्थिति में शांत रहकर सही फ़ैसला ले सके, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि झलक गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ वो इतनी देर से अपमान सह रही थी, इसका मतलब साफ था कि उसने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ किसी तरह का तमाशा ना हो और सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहें, क्योंकि वो दादाजी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। वहीं अनामिका कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि दादाजी ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। फिर वो बारी बारी से सबको देखने लगे। ठीक उसी वक्त दादाजी कड़क आवाज में बोले, यहाँ जितने भी बिलियनर्स और मीटिंग में शामिल होने आए हैं, खासकर आप मिस्टर आदित्य राणा, फिर वो सीधे उनकी तरफ देखकर बोले, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन लड़कियों ने यहां आखिर ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी कि आप लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए और यहां तक कि बंदूक तक निकाल ली। दादाजी का ये सवाल सुनते ही शालिनी पूरी तरह से हैरानी में डूब गई थी, और शालिनी मन ही मन सोचने लगी थी कि दादाजी को आखिर हो क्या गया है, क्या बुढ़ापे में सठिया गए हैं क्या जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतने सवाल जवाब करने की, अरे जब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये दोनों लड़कियां हैं और यहाँ जबरदस्ती घुसाई हैं, तो इन्हें सीधे तरीके से मारपीट करके डरा धमकाकर यहां से बाहर निकाल देना चाहिए था ना। लेकिन तभी आदित्य राणा तुरंत सीधा खड़ा हुआ और मिस्टर मल्होत्रा जी को देखकर बोला था, सर ये लड़कियां जबरदस्ती यहां आई हैं, लेकिन इन्होंने सबके सामने ये भी कहा है कि ये मीटिंग इन्हीं के लिए की गई है और ये इस मीटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी की है, बदतमीजी तो बाकी लोगों ने इन्हें ट्रोल करके की है। आदित्य की बात सुनकर कई लोग एक दूसरे को देखने लगे थे, लेकिन अगले ही पल शालिनी हल्का सा मुस्कुराकर दादाजी के सामने बोली थी,
मैं आपसे कह ही रही हूँ ना सर, ये यंगस्टर लड़कियां हैं जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता और इसी तरीके से किसी बड़े मकसद के तहत यहाँ आ जाती हैं। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लड़कियों की वजह से हम अपनी इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी मीटिंग कैंसिल नहीं होने देंगे। वैसे भी शहर के सारे बिलियनियर्स यहाँ मौजूद हैं जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहती कि इन सब के सामने हमारी इंडस्ट्रीज का नाम बदनाम हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इन लड़कियों को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलवा देती हूँ। अब जैसे ही शालिनी ने इस तरह की बातें की, दादाजी तेज अंदाज में गरजते हुए बोले, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में इस तरह की बातें करने की? समझती क्या हो अपने आप को? तुम सिर्फ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक मामूली सी मैनेजर हो, अपनी हद में रहो। हमने कुछ दिनों के लिए तुम्हें सारे इख्तियार क्या दे दिए? क्या तुम खुद को इस कंपनी की मालकिन समझ बैठी हो? एक बात कान खोलकर सुन लो शालिनी गुप्ता, अगर इस कंपनी में काम करना है तो इस लड़की की सारी बातें माननी होंगी और इसके साथ तमीज से बात करनी होगी। जैसे ही दादाजी ने अचानक छलक की ओर इशारा करते हुए ये कहा, वहां मौजूद लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। सब एक दूसरे को हैरानी और नासमझी से देखने लगे थे। तभी अचानक अनामिका की नजर आरफ पर पड़ी। आरफ के हाथों में अभी भी नीडल लगी हुई थी। ये देखकर अनामिका पूरी तरह से घबरा गई और तेज आवाज में बोली, पापा पापा, ये क्या हुआ आपको? आपको ये चोट कैसे लगी? आप लोग कहाँ गए थे? आने में इतना टाइम कैसे लग गया? जैसे ही अनामिका ने इस तरह की बातें करना शुरू किया, वहां मौजूद सभी लोग हैरानी में डूब गए थे, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा झटका इस बात का लगा था कि दिग्विजय सिंह जी के साथ जो व्यक्ति आया था उसे ये लड़की पापा कहकर बुला रही थी। वहीं झलक ने भी जैसे ही आरव जी के हाथ में ड्रिप देखी, वो भी पूरी तरह से परेशान हो गई। वो तुरंत उनके पास गई, उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ है आपको? झलक की आवाज में साफ घबराहट थी। तभी आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत हो, बस छोटी सी चोट लगी थी, थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इसी वजह से आने में थोड़ा टाइम लग गया। तुम्हारे दादा साथ में थे इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। आरव की ये बात सुनते ही वहां मौजूद लोगों की आंखें तो मानो बाहर निकलने वाली थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ी हुई ये हिम्मती लड़की असल में कौन है।
शालिनी, जो अभी तक सच्चाई समझने की कोशिश कर रही थी, खुद को थोड़ा सा संभालते हुए बोली, सर आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तभी दादाजी कड़क अंदाज में बोले, मैंने यहाँ आप सब लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया था ताकि मैं सबको ये बता सकूं कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बागडोर आज के बाद मेरी बड़ी पोती झलक आरव मल्होत्रा संभालेंगी। ये कहते हुए उन्होंने झलक को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था। आज से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की मालकिन, ओनर और CEO मेरी पोती है। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आदित्य की तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वैसे भी आदित्य को पहले से ही इस बात का शक था कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, या फिर ये लड़की कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही है। आखिर भला कोई इतनी बड़ी कंपनी के सामने इस तरह दबंग अंदाज में कैसे खड़ा हो सकता है।